उसके लिए आपको पेट्रोल और दुनिया भर की और चीजें डाल करके उसको साफ करना पड़ेगा, डामर के रंग जैसा। और चौथा जो होता है वो कृमि राग का है, एक कीड़ा होता है कृमि, पेट के अंदर भी रहता है और कई बार जीव पड़ जाते हैं कुत्ते वगैरह के घावों में। तो उन जीवों को अगर पानी में रख दो आप, रंगीन पानी में, तो उस जीव के शरीर से मल भी उसी रंग का निकलेगा। कृमि का जो मल है, जैसे हरे पानी में आपने रख दिया, उसका मल भी उसी रंग का होगा। फिर उस मल को आप सुखा लीजिए और जला दीजिए, तो जलने के बाद भी उसका रंग नहीं उड़ने वाला, ऐसा पक्का रंग। तो वो लोभ कषाय का चौथा स्थान है। इतना तीव्र लोभ होता है उसको कि वो कभी शांत होता ही नहीं है, वो लोभ बना ही रहता है। इस प्रकार ये 24 स्थान आपने सुने अभी। तो रविवार का दिन था, तो कषायों के स्थान, पुण्य पाप के स्थान समझ लेने के बाद अपने को स्वाध्याय करने का एक बहुत अच्छा सूत्र मिल गया। देखो, सच्चा स्वाध्याय क्या है? अपने आप को पढ़ना, स्व का अध्ययन, अध्ययनम अध्यायः। अध्ययन करने को क्या कहते हैं? अध्याय कहते हैं। प्रत्यय बदल दो, अध्ययन नपुंसक लिंग में बना, अध्याय पुल्लिंग में बन गया, अर्थ एक ही है दोनों का। तो अपना अध्ययन, अब अपना अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना है? कभी भी बैठो आप और देखो कि इस समय कौन सा स्थान चल रहा है मेरा। पहले तो ये पकड़ो कि कौन सी कषाय है, क्रोध है, मान है, माया है या लोभ है। अगर आपके अंदर से ऐसी आवाज आती है कि नहीं, इस समय मेरे अंदर मान तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैं तो मान रहित हूं, बस यही मान है क्या? समझे आप, ये आत्म प्रशंसा हुई कि नहीं? आत्म प्रशंसा कौन सी कषाय है? मान कषाय है। मैं बिल्कुल मान नहीं करता, यही तो मान है। कषायों का बड़ा विचित्र खेल है। तो ऐसे अपनी कषायों को पहचानो और उसके बाद उसके स्थान देखो, स्वाध्याय हो जाएगा आपका। बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना ये 24 स्थान आप याद रख लो। क्रोध मान माया लोभ के 16 स्थान हो गए, पुण्य पाप के 8 स्थान हो गए, बस स्वाध्याय हो गया। संसार अनुप्रेक्षा में नरकों का वर्णन 36वीं गाथा, छिज्जय तिल तिल मित्तम भिंदिज्जय तिल तिलंतरं सयलम वज्जगिय कड्डिज्जय निहप्पय पूय कुंडम्मि। कैसे कष्ट है नरकों के, तो बतलाते हैं। तिल तिल मित्तम छिज्जई, जो तिल होता है ना, तल बोलते हैं गुजराती में, उसके बराबर तो छिज्जई, उनको काट डालते हैं वो। और तिल तिलंतरम सयलम भिंदिज्जई, और फिर उसमें भी और बारीक 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 टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। और कड्डिज्जई वज्जज्ञ, वज्राग्नि के द्वारा उनको क्वाथ रूप कर देते हैं, जैसे कुछ वनस्पतियों को साथ में मिला करके पानी के अंदर डालकर अग्नि पर गर्म किया जाता है। और गर्म करके उसको पानी जब आधा उड़ जाता है या फिर एक चौथाई रह जाता है या आठवां हिस्सा जब बाकी रह जाता है, तब तक उसको खौलाते हैं, उबालते हैं, उसको बोलते हैं कड्ढिज्जई, काढ़ा बनाना। और वो कितनी तीव्र अग्नि होती है? वज्राग्नि। वज्राग्नि यानी जैसे बिजली गिरती है उसमें कितनी तीव्र अग्नि होती है, वैसी उसके द्वारा काढ़ा बना देते हैं उनका, नरक के वासियों का। और निहप्पय पूय कुंडम्मि, और पूय कुंड माने पीप के जो कुंड है, जल कुंड तो आपको कई स्थानों पर मिल जाते हैं, पानी के ऐसे कुंड रहते हैं जिसमें पानी भरा रहता है, पहाड़ियों के ऊपर भी कुछ पानी के ऐसे स्टोर्स होते हैं, कुंड होते हैं। तो ये पूय कुंडम्मि, जो पीप के, अथवा पूय शब्द का अर्थ अपवित्र दुर्गंधित कुंडों में उनको डाल देते हैं। तो सारी इंद्रिय संबंधी जितनी वेदनाएं हैं वो उनको भोगनी पड़ती है। फिर इसके आगे देखिए कैसे और दुख हैं। इच्छेव माई दुखम जमनरये सहदि ए समयमि तम सयनम वर्णीदुम न सक्कदे सहस जी होवि। इच्छेव माई दुखम इत्येवम आदि माने इस प्रकार के और भी अनेक दुख हैं वहां नरकों के। तो जम जो एक समयमी नरये दुखम सहदि, एक समय में जो नरक में दुख सहा जाता है या वो नरक वाला जीव एक समय में जो दुख सहता है, तम सैलम वर्णिदम उस सारे दुख का वर्णन करना सहस जीवो भी न सक दे। सहस जीव, सहस्र जीव माने किसका विशेषण हो सकता है? शेषनाग, ठीक है। तो हजार जीवाओं वाला भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। सहस्र जीवा, सहस्रम जीवा रसना यस्य स तथोक्त। अपिशब्द न केवलम एक जीव, एक जीव के साथ तो हो ही नहीं सकता वर्णन। हजार जीव वाला भी कोई वर्णन करे तो भी नरकों के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। कितने समय का दुख? पूरी नरक आयु पर्यंत के दुख की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नरक में एक समय में जितना दुख होता है उस दुख का वर्णन भी हजार जीवाओं द्वारा संभव नहीं है। सवंपि होदि नरये खेत सहावेण दुखदम असुहम कुविदा विसव कालम अन्नोन्नम होंतीने रैया। नरये, नरक में क्या होता है? तो बोले खेत सहावेण, क्षेत्र के स्वभाव से। देखो क्षेत्रों के भिन्न भिन्न स्वभाव होते हैं। मूलाचार ग्रंथ में और कल्याणकारक ग्रंथ में तीन प्रकार के क्षेत्र बताए हैं, जांगल, अनूप और साधारण। जंगल क्षेत्र का मतलब जंगली एरिया है, वहां पहाड़ है, वृक्ष है, बिल्कुल जंगल है। तो साधु को अपना संयम पालन करने के लिए इन तीनों क्षेत्रों के ज्ञान पूर्वक, इन तीनों क्षेत्रों में कौन सी वस्तु आहार में मेरी साधना के अनुकूल होगी, कौन सी प्रतिकूल होगी, इस बात का विवेक रखना चाहिए। मूलाचार में इसका उल्लेख है। जंगल देश, जहाँ जंगल ही जंगल होते हैं। फिर अनूप देश होता है एक। अनूप देश में क्या है कि झील है, बाग बगीचे हैं, जो बहुत सुंदर और फिर रमणीक स्थान होते हैं, उनको अनूप देश बोलते हैं। तो ऐसे स्थानों पर कौन सा भोजन लेना, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। और तीसरा साधारण देश होता है कि जो जंगलों की श्रेणी में भी नहीं आएगा, बगीचों की श्रेणी में भी नहीं आएगा, ऐसे ही साधारण स्थान है, तो इसकी जानकारी। तो क्षेत्र के स्वभाव से वहाँ की सामग्री में भी अंतर पड़ता है। हर जगह चावल का एक स्वाद नहीं होता, हर जगह दूध एक जैसा नहीं होता। जंगल देशों में गायों का दूध अलग स्वाद वाला होता है और अनूप देशों में अलग स्वाद वाला होता है। नैनागिरी का दूध हमें याद है, वहाँ का स्वाद अलग है, और फिर यहाँ गुजरात के दूध का स्वाद अलग है, महाराष्ट्र के दूध का स्वाद अलग। सब गायों के दूध हैं, लेकिन क्षेत्र के स्वभाव से उसमें परिवर्तन आता है। कहीं रूक्ष क्षेत्र होते हैं, कुछ महाराष्ट्र के ऐसे स्थान हैं जो मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ का स्थान है, वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे ही नहीं आपको, सब छोटे छोटे बिल्कुल फर्न्स जैसे, बुशेस जैसे मिलेंगे आपको, छोटे छोटे आकार के पेड़ पौधे। और कहीं जाओ तो फिर जैसे वडोदरा के आसपास देखो तो ऊँचे ऊँचे मतलब 100-150 फुट के पेड़ मिलेंगे आपको, बड़े बड़े विशाल। और कहीं रेत ही रेत रहती है और कहीं काली मिट्टी रहती है। तो क्षेत्रों में अंतर होता है यहाँ मध्य लोक में। फिर नरकों में क्या बताया कि वहां तो क्षेत्र के स्वभाव से सवंपी दुखदम अशुभम होदी, सब कुछ दुखदाई होता है और सब कुछ अशुभ होता है। नरकों का क्षेत्र इतना विकट है कि वहां सब कुछ दुखदायी है और सब कुछ अशुभ है, कुछ भी शुभ नहीं वहां, न गंध शुभ है, न स्पर्श शुभ है, न वातावरण शुभ है, हर चीज अशुभ है। और सब कालम नेरैया, सर्व काल यानी पूरी आयु पर्यंत, नेरैया, नेरैया मतलब नरकवासी, जो नारक हैं वे अन्नोन्नम एक दूसरे पर कुविदा होती, कुपित बने रहते हैं, हमेशा वो एक दूसरे पर क्रोधित रहते हैं। नरक गति में क्रोध का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन वार अधिक है बाकी गतियों की अपेक्षा। तिरंचों में माया का परिवर्तन अधिक होता है, मतलब कषाएं बदलती है बार बार, माया अधिक आती है। मनुष्यों में मान अधिक आता है बार बार, नरक में क्रोध अधिक आता है, देवों में लोभ अधिक आता है। ऐसे चार गतियों में चार कषायों की अधिकता पाई जाती है, याद रख लोगे? रखो तो अच्छी बात है। नरकों में सब कालम अन्नोन्नम कुविदा होती, एक दूसरे पर वो कुपित बने रहते हैं, नाराज होते हैं। बाकी कषायें आती है, ऐसा नहीं कि क्रोध पूरे 33 सागर तक चल जाए, क्योंकि कषायों का काल अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त में कषाय पलटती जरूर है लेकिन क्रोध बार बार आता रहता है। मनुष्य में मान बार बार आता है, अनुभव करके भी अपन जान सकते हैं मान कषाय अधिक आती है। फिर तिरंचों में माया कषाय होती है, और ऐसा नहीं कि मनुष्य में माया कषाय नहीं होती, मनुष्य में माया कषाय होती, कुछ होना और कुछ दिखाना यही तो माया है ना। देवों में लोक कषाय का परिवर्तन है, देखा, अन्न भवे जो सुयणु सोविय नरये हवे हणे ऐ कुविदो एवं तिव्व विवागम बहुकालं विसहदे दुःखम्। अन्न भवे जो सुयणु, उस अन्य भव में अर्थात पिछले जन्म में जो सुयणु सुजन था, माने अपने प्रति बहुत अच्छा बर्ताव करने वाला था, साथ में बैठ करके मिलजुल करके एक टेबल पर व्यसन करते थे, वो एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे बचपन के, वो भी सोविय नरे ऐ कुविदो हणी, नरक में अत्यंत कुपित होकर के मारता है, माने वहां कोई सुजन नहीं होता, कोई स्वजन नहीं होता, सब एक दूसरे पर कुपित होते हैं, एक दूसरे के शत्रु बनकर वार करते हैं, मार काट मची रहती है। एवं इस तरह बहुकालम बहुत काल पर्यंत, तीव्र विवागम दुखम, तीव्र है विपाक जिसका, ऐसे दुख को विसहदे, विशेष रूप से वो नरकवासी सहते हैं। तीव्र विपाक, तीव्र विपाक यानी बहुत ज्यादा शक्ति वाला, तीव्रता को लिए हुए जो दुख, इंटेंस जिसको बोलते हैं, बहुत तीव्र, वैसा दुख नरकों में वो जीव सहते हैं। क्योंकि वहां जब सुजन और सज्जन स्वजन भी दुश्मन बन जाते हैं तो फिर किसी से सुख की क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब इसके आगे कह रहे हैं, नरक का वर्णन पूर्ण हुआ, आगे फिर संसार में क्या परिणति होती उसका चित्रण है। ये संसार माने चार गतियों का भ्रमण है, और भ्रमण किसका, सबका नहीं, एक एक जीव का, या फिर अपन ये लगा लो अपना, क्योंकि स्वाध्याय में जब ऐसा लगने लग जाए कि ये मेरे लिए है तभी कल्याण होता है। जब तक ये अनुभव नहीं हो, ये एहसास ना हो कि ये बात मेरे लिए कही जा रही है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कुछ गाथाओं को पढ़ करके लगा कि उसके लिए बिल्कुल सही गाया, बिल्कुल आता ही है ये कि ये बात जो है बिल्कुल उस पर लागू होती है, मेरे मतलब मेरी स्ट्रीट में रहता वो, 100% उस पर लागू होती बात नहीं, होती होगी उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं कम हूं क्या किसी से। अनादिकाल से संसार में रहते हुए किसने क्या नहीं किया है, विचार करने की बात है। सबने सब किया है, फिर क्यों अपने को शरीफ समझ रहे हो, उनसे स्पेशल क्यों समझ रहे हो? ये भी मान है, मान का परिवर्तन बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो किसी चीज को पढ़ते पढ़ते मान कशाया आ जाए और अपने को थोड़ा स्पेशल समझने लग जाए, मान हो गया। तत्तो निस्सरिदूणम् जायधि तिरि एसु बहुवेयप्पेसु तत्थ विपावदि दुःखम् गब्भे व्यच्छेणादीयम्। क्या वर्णन है, तत्तो निसरिदूणे, वहां से निस्सरित होता है माने नरक से अपनी आयु को ले देकर पूरा करके जब निकलता है बाहर, नरक से छुटकारा प्राप्त करके, बहु व्यप्पेसु तिरियेसु जायदे, अनेक है विकल्प अर्थात भेद जिनके, ऐसे तिरेंचों में यानी पशु पक्षियों में जायदी पैदा होता है। क्योंकि नरक से निकलने वाला नियम से सैनी पंचेंद्री ही होता है, दो इंद्री तीन इंद्री चार, एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक के वहां उत्पत्ति नहीं होती नरक से निकलने वाले जीव की, और असैनी पर पंचेंद्री भी नहीं बनता, और वो तो नियम है कि वो सम्मूर्छन नहीं होगा नरक से निकलने वाला, गर्भज तिर्यंच होगा, लिखा भी आगे देखिए कैसे। और तत्थ भी पावती दुखम, और नरक से निकलकर जो जीव तिर्यंच गति में आया है वो कार में घूमने वाला पोमरेनियन या फिर और किसी अच्छा रंग का कुत्ता नहीं होगा। मैंने क्या होता है कि कई जानवर भी बहुत ठाट से रहते हैं, डेनमार्क में एयर कंडीशनर में गायें रखी जाती है, एयर कंडीशनर का मजा गायों को है, और यहाँ भारत में अभी आप जानते नहीं होंगे शायद भारत की पूरी दशा कैसी है। उड़ीसा में एक व्यक्ति गए थे, उनने सुनाया था कि एक गांव में जाकर उनने देखा तो उस गांव में एक भी घर पे दरवाजा नहीं था, वो सब कुटिया नुमा घर थे पूरे, और इतनी गरीबी थी वहाँ कि उनने किसी से चर्चा की, वहाँ के मुखिया से बात करना चाहा, तो फिर मुखिया की पत्नी पहले मिली और उसके बाद फिर मुखिया से बात हुई, पूछा कि आपकी आमदनी कितनी होती है, तब किसी ने बताया कि एक दिन में 1.5 रुपया, किसी ने बताया कि एक दिन में 1 रुपया, और 2-5 रुपये तो मुश्किल से किसी के घर में कमाई होती थी एक दिन की। और फिर उस व्यक्ति ने जो चीज़ देखी उसने बताया कि मैंने ये देखा कि जिस कपड़े को वो मुखिया की पत्नी पहनी हुई थी और मेरे से बात कर रही थी, जब मुखिया आए तो वो अंदर के एक छोटे से ऐसे कक्ष जैसा था, कोई ऐसी आड़ सी थी, वो पत्नी वहां चली गई पीछे, और फिर वही कपड़ा पहनकर मुखिया मेरे से बात करने आया था, माने एक घर में कपड़े पहनने तक की हालत नहीं है। इसलिए हमारा ये आप लोगों से, जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे शिविरों का आयोजन करते हैं, एक सुझाव था क्या है कि अपन सिर्फ देव शास्त्र गुरु की सेवा करो और फिर बाकी लोग भूखे मरते रहे अपनी आंखों के सामने, ये धर्म नहीं हुआ। ये हमारा आपसे कहना था कि जैसे चिंतामणि में बड़े सुंदर शिविर लगते हैं और फिर यहाँ पर हिम्मतनगर में और फिर कई स्थानों पर लगते रहते हैं आपके समाज के शिविर, तो हमारा ये कहना है कि वहाँ आसपास में कोई भी ऐसे लोग मिल जाएं आपको, चिंतामणि में तो है बिल्कुल, हमने अपनी आंखों से देखे हुए लोग, उनको आप हर वस्त्र, हर वर्ष कुछ वस्त्र दे सकते हैं, कुछ ना कुछ दे करके आप आइए, नहीं तो फिर उनके अंदर क्या चर्चा होती है बाद में आपने नहीं सुनी होगी, वो यही चर्चा करते हैं कि ये बनिए लोग यहाँ पर सब अपना कार्यक्रम करके चले गए, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अपने पैसे की शेखी बघारने के लिए आए थे यहाँ पर, माने उनको मानसिक संताप भी होता है कई बार। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप उनके लिए कुछ दो चीजें दे दें तो फिर उनके अंदर से जो बद्दुआ निकल रही है वो रुक सकती है। वो भी अपने देशवासी है, वो भी अपने भाई है, वो भी भावी सिद्ध है उनमें कई। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन क्या मालूम उनमें से कोई जीव ऐसा हो जो अपने से पहले मोक्ष चला जाए। आज जिनको आप नमो सिद्धानम बोल रहे हैं वो किसी और पर्याय में आपके सामने तड़प जाए तो आपको समझ में नहीं आता कि हमने सुबह जिनको नमस्कार किया है उसकी ये दुर्दशा है। और फिर पूरा मूल कारण तो इसका ये है कि देश का जो शिक्षा तंत्र और जो न्याय तंत्र है वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि आज वो संवेदना मर गई है। किसी को किसी की पीड़ा का एहसास नहीं होता, खुद को पीड़ा होती है बस, वही पीड़ा नहीं होनी चाहिए इतना भर भाव आता है। तो अगर आप धर्म कार्य करते हुए ऐसे शिविर लगाते हुए अपने समाज की नई पीढ़ी को तो आप शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन साथ में उन गरीबों के लिए भी अगर आप कुछ दे दें। मुक्तागिरी में एक सज्जन आते हैं दिल्ली से, उनका फोटो भी उधर लगा हुआ है। उनका पैर मेडिकल साइंस के अनुसार तो काम नहीं कर सकता लेकिन वो तो मुक्तागिरी का कोई अतिशय है कि वो बराबर चलते हैं और बिना वैशाखिया लिए चलते हैं। हुआ ये था कि दिल्ली में उन्होंने कभी ऐसा स्वप्न देखा कि मैं वहाँ ठीक हो जाऊँगा मुक्तागिरी। तो पत्नी से पूछा कि मुक्तागिरी कौन सी जगह है, तो फिर पत्नी बोलती है कि देखो मैं देखकर बताती हूँ, मुक्तागिरी माने कोई तीर्थ क्षेत्र का नाम हो सकता है, देखो पता लगाती हूँ। जैन तीर्थ दर्शन में देखा, वहीं से दिल्ली से छपी शकुन प्रिंटर से देखा जैसे, तो फिर उसमें मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र निकला। तब इनने आग्रह किया कि चलो अपन वहां चलते हैं। वो लोग बोल रहे कि इतनी दूर कहाँ जाओगे। अंत में फिर तैयारी किए, आए वहां पर आए वैशाखिया लेकर के। उनको मतलब कल्पना भी नहीं थी कि ऊपर की वंदना हो सकती इतनी बुरी हालत में, पैर शून्य था, वहां सुई चुभाओ तो भी पैरों में कोई संवेदना नहीं थी। लेकिन फिर ऐसे प्रेरणा हुई कि चलो कोशिश तो कर लें। तो वैशाखिया ले लेकर के एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, करीब 500 सीढ़ी के आसपास है ऊपर, तो चढ़ते चढ़ते फिर गए ऊपर। और फिर कैसा क्या चमत्कार हो गया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के पास आए तो फिर उनको लगा कि अब वैशाखिया बिना भी वंदना हो सकती है। वैशाखिया छोड़ करके उन्होंने पूरी ऊपर सिद्ध क्षेत्र की वंदना की, फिर वापस लौटे तो फिर उठाना पड़ी वैशाखिया। फिर ऐसे दो तीन बार ये क्रम चला, फिर उन्होंने ऐसे अंदर से एक पुकार की भगवान से कि भगवान क्या बात है कि मैं यहाँ आता हूँ तो फिर ठीक हो जाता हूँ और फिर लौटता हूँ आपके दरबार से तो फिर उसी बदहाल दशा में लौटना पड़ता है। अब की बार जब वंदना की तो फिर वैशाखिया दोबारा उठाने नहीं पड़े, वो हमेशा के लिए ठीक हो गए, अभी तक ठीक है। वो प्रतिवर्ष मुक्तागिरी आते हैं और मुक्तागिरी दो बार आते हैं और वहाँ आकर के फिर वहाँ जितने भी आसपास गरीब लोग रहते हैं उन सब के लिए कपड़े देते हैं, भोजन कराते हैं। एक बार उनका भोजन ज़रूर होगा वहाँ। ये सब क्या है कि इन चीज़ों को अपन ने जैन संस्कृति से बिल्कुल उड़ा सा दिया है, जबकि इन चीज़ों से भी जो सामान्य जनता है उनके अंदर सद्भावना पैदा होती है। आप बहुत ऊंचे धर्मात्मा बनकर के भले अव्रती हो आप, लेकिन अपने आप को इतना ऊंचा आध्यात्मिक समझ लेते हैं अपन कि कई बार इन चीज़ों को बिल्कुल भुला देते हैं। तो ऐसा नहीं, अपन बहुत व्यापक बनकर के चलो ना, किसी को ठुकराने की क्या आवश्यकता है, सबकी सद्भावना लो। कभी कभी क्या होता है गाड़ी चलाते समय भी या फिर रास्ते पर चलते समय भी किसी चालक को तकलीफ हो जाती अपने निमित्त से, वो भले कुछ बोलता नहीं लेकिन ऐसे देख करके जाता हूं, तो उतनी भी नेगेटिव एनर्जी अपने को नुकसान करती है। इसलिए क्यों लेना किसी की बद्दुआ, अपना जीवन ऐसा बना देना चाहिए कि सबकी सद्भावना अपने साथ हो। ये मत समझना कि अपन अकेले सब कुछ कर डालेंगे, नहीं, अभी बहुत कमजोर है याद रखना। एक दिन भी बिना कषाय के निकल जाता हो तो बोलना ईमानदारी से, बहुत कमजोर जीव है। पर पंचम काल में पैदा हुए ये तो सबूत है सबका कि अपनी क्या औकात है, समझ लो आप। अपन पंचम काल में क्यों पैदा हुए और इतने धार्मिक विवादों के बीच में जी रहे हैं अपन, क्या कारण है? बिल्कुल सिद्ध है कि अपन वैसे पुण्यात्मा नहीं है जो पहले थे, तो इसलिए कुछ अपन सबकी सद्भावनाओं को भी साथ में लो। और फिर जैन दर्शन ने तो यही सिखाया अपने को कि नहीं, दूसरों के सुख की चिंता करो। देखो आचार्य भी जब दूसरे संघ से कोई साधु आते हैं, प्रवचन सार ग्रंथ में जैसेन आचार्य महाराज ने लिखा है पोषण, शुभोपयोगी साधु का स्वरूप जो दिया है, पोषणम तेसिम अभ्युत्थानम गहनम, पोषणम तेसिम, उठकर खड़े होना, उनको स्वागत करना, उनका कोई साधु आते हैं तो स्वागत करना, फिर तेसिम पोषणम, उनका पोषण करना। पोषण करने का मतलब क्या है? आचार्य जयसेन स्वामी ने उसका खुलासा किया, अशन शयन आदि चिंता, मतलब ये चिंता रखना कि इनका भोजन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इनको रात में नींद बराबर आई, डिस्टर्ब तो नहीं हुए। ये उस समय प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में जयसेन स्वामी लिख गए हैं। तो ऐसा नहीं, अपन बिल्कुल ऐसा मत समझो कि अपन दूध के धुले हों और फिर बिल्कुल अपना रास्ता तो बिल्कुल हाईवे है। नहीं, अभी हाईवे पर नहीं आए, हाईवे पर आने के लिए अपने को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफी साधनाएं करनी पड़ेंगी और बहुत पुण्य कमाना पड़ेगा, तब जाकर के वो मूल मार्ग मिलने वाला है। इसलिए अभी तो बहुत विनम्र बन जाओ और फिर सबके प्रति सद्भावना की कोशिश करो दिन भर। कभी भी मौका पड़े, बस किसी के बारे में कोई विचार आता है कि नहीं 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 ये विचार मुझे नहीं करना, मैं अच्छे विचार भी कर सकता हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये मत सोचो आप कि मुझे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। देखो कर सकता हूं मैं कॉन्फिडेंस है, करना चाहिए मैं एक ढील है, थोड़ी सी थोड़ा प्रमाद है। इसको लुईस हे ने कहा है कि एक शब्द है शुड और दूसरा शब्द है कुड। उनका सुझाव यह है कि शुड शब्द को हमेशा के लिए अपने कोष से बाहर निकाल कर कहीं दूर फेंक दो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब बातें समाप्त कर दो और फिर ऐसा हम कर सकते हैं, इसको ले आओ, देखो आपके जीवन में कितना सुधार आता है, कितना सुधार आता है। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या किया बचपन से आज तक, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ नहीं किया अभी तक। करना चाहिए बस इतना ही किया है, इतना विचार किया, कुछ किया क्या? फिर ये जब सोचते हैं कि ये कर सकता हूं मैं, ये मेरे पास है रास्ता, तो जब लगता है कि ये कर सकता हूं तो फिर विकल्प आ जाता है, करने में अपन स्वतंत्र होते हैं करने के लिए। तो फिर ये चीजें भी इसमें अगर समाविष्ट हो जाए, जैसे इसमें तो बता रहे हैं कि वो नरक से निकलकर पशु योनि में आता है, बहुत प्रकार के पशु हैं, लेकिन पशुओं में भी कुछ ऐसे हैं जो कुछ पुण्य लेकर के आए हैं। ज्यादा पुण्य वाले जो थे वो तो भोग भूमि चले गए, और थोड़ा पुण्य लेकर के जो यहां आ गए कर्म भूमि में, वो एक इंसान भूखा मरता है और एक कुत्ता कारों में घूमता है, इसका कारण क्या है? पुण्य और पाप, और क्या कारण हो सकता है बताओ? तो तथ्य विपावधि दुखम, तिरेंच गति में भी नरक से निकल कर जो तिरेंच गति में आया है वो दुख प्राप्त करता है। गब्भे विय छेयणादियम, कभी कभी तो वो जानवर गर्भ में होता है तो भी वध कर दिया जाता है। पांडु राजा की कथा पांडव पुराण में आप देखना, कभी उसने किसी तिरंज का वध किया था। और फिर ऐसे और भी घटनाएं मिल जाएंगी।